ब्रह्मा कुमारी सिक्योरिटी सर्विसेज विंग प्रस्तुत करता है इनर स्ट्रेंथ की टू ओवरकम चैलेंज।
नमस्कार, सुप्रभात। ब्रह्मा कुमारी के सिक्योरिटी सर्विस विंग की ओर से आयोजित दो दिवसीय ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस जिसका विषय है इनर स्ट्रेंथ की टू ओवरकम चैलेंजेस, इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, हम अपने अंदर की शक्तियों को बहुत कम जानते हैं और जब उसे नहीं जानते तो बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित करती हैं, इस सब से हम अवगत हैं। हिरण 90 किलोमीटर पर आर भागता है जबकि बाघ 60 किलोमीटर पर आर भागता है, फिर भी बाघ हिरण का शिकार कर लेता है क्योंकि हिरण के अंदर अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं होता। वो भयभीत होता है कि शेर मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और इसीलिए भागते भागते बार बार डर के पीछे देखता रहता है और शेर का शिकार बन जाता है। यदि वो अपनी आंतरिक क्षमता पर विश्वास रखता, शक्ति पर विश्वास रखता, तो शायद वो कभी भी शेर का शिकार नहीं होता। हम भी अपनी आंतरिक क्षमता को पहचाने और यही उद्देश्य है सिक्योरिटी सर्विस विंग का कि कैसे हम अपने आंतरिक जगत, आंतरिक शक्तियों को जाने पहचाने और ज्यादा निखर करके सामने आए। जो विपदाएं परिस्थितियां हमारे सामने अपने जीवन में आती हैं, चाहे वो परिवार में, व्यक्तिगत रूप से या फिर अपने फील्ड में, उनका हम बेहतरीन तरीके से कैसे सामना करें, ये विंग इसीलिए जल थल नव में लगातार 2002 से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। वो कैसे, आइए एक सुंदर से वीडियो के माध्यम से देखते हैं।
आधुनिक समय में सुरक्षा बलों के सामने अनेक चुनौतियां हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर हो, राष्ट्रीय स्तर पर आंतरिक सुरक्षा हो, सामाजिक स्तर पर कोरोना का प्रकोप हो या व्यक्तिगत स्तर पर अनेक जिम्मेवारियों का बोझ हो, इन सब दायित्व को सफलतापूर्वक निभाने के लिए लगातार प्रशिक्षण के साथ साथ स्व सशक्तिकरण अर्थात मानसिक शक्ति व मनोबल बढ़ाने की भी अत्यंत आवश्यकता है। सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का निर्माण सन 2001 में राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा भारत की मिलिट्री, पैरामिलिट्री एवं स्टेट पुलिस फोर्सेज के लिए किया गया ताकि आंतरिक शक्ति के विकास द्वारा बढ़ते हुए स्ट्रेस लेवल्स को कम किया जा सके। इन कार्यक्रमों का संचालन माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारीज की अकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर द्वारा होता है। डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा DG CRPF ने सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का ऑफिशियल उद्घाटन सन 2002 में किया और इसमें पहली बार आर्मी व नेवी के हेडक्वार्टर्स ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ऑफिशियल ड्यूटी पर नॉमिनेट किया। सुरक्षा बलों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसी अनुसार विषयों का चयन किया गया, जैसे सेल्फ एम्पावरमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, पॉजिटिव थिंकिंग, मैनेजिंग चैलेंजेस, स्लीप मैनेजमेंट, मेडिटेशन आदि। यह बात भी स्पष्ट होती जा रही है कि अनेक समस्याओं का कारण जीवन में मूल्यों की कमी है। इस विषय पर नवंबर 2020 के ऑनलाइन कार्यक्रम में अनेक वरिष्ठ अधिकारी जैसे DG ITBP, DG SSB, DGP वेस्ट बंगाल, DGP उत्तराखंड आदि ने भाग लिया। आध्यात्मिकता हमें मूल्यों को आत्मसात करना सिखाती है और मेडिटेशन का अभ्यास मन को स्थिर बनाता है। साहस, दृढ़ संकल्प, सहयोग एवं टीम भावना के मूल्य एक व्यक्ति में सच्ची नेतृत्व कला को विकसित करती है, जिससे असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी मन को स्थिर करने की कला, जीवन में एकाग्रता, परखने की शक्ति और सही निर्णय करने की विशेषताएं सुनिश्चित करती है। शुरुआती वर्षों में विभिन्न सुरक्षा बलों और विशेष आर्म्ड फोर्सेस के निमंत्रण पर अनेक तनाव मुक्ति के कार्यक्रम किए गए, जिससे अनेकानेक सुरक्षा कर्मियों को लाभ प्राप्त हुआ। सन 2014 से सिक्योरिटी सर्विसेज विंग द्वारा विशेष भारत के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए विशाल स्तर पर सेवाओं का आरंभ हुआ। जून 2014 में सिक्योरिटी सर्विसेज विंग को एम्पैनल किया गया श्री DK पाठक DG BSF द्वारा। BSF प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2014 से सभी फ्रंटियर्स, सेक्टर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स में दो दिवसीय तनाव मुक्ति कार्यक्रम किए गए। इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर CISF ने भी 2015 से 2017 तक 6 ट्रेनिंग सेंटर्स, 8 एयरपोर्ट सेक्टर्स तथा 80 ऑपरेशनल यूनिट्स में 2 दिवसीय तनाव मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन कराया। फील्ड फॉर्मेशंस के कार्यक्रम के साथ साथ वर्ष में एक बार माउंट आबू मुख्यालय में सभी फोर्सेस के लिए 3 दिवसीय रेजिडेंशियल प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। 2015 में मुख्य अतिथि के रूप में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स श्री किरेन रिजिजू पधारे। श्री किरेन रिजिजू ने अपने उद्घाटन भाषण में CTOs के लिए सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ ट्रेनिंग के प्रति बहुत स्पष्ट मैसेज दिया।
अपना जो सेंट्रल फोर्सेस है, अपने गृह मंत्रालय के माध्यम से मैं तुरंत जाकर के अपने डिवीजन में सबको कहूंगा कि सारा फोर्सेस में इसका एक मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए जो लगातार इस तरह का जो ट्रेनिंग है, इंटरेक्शन है, ये हमारे जितना भी सिक्योरिटी फोर्सेस में है इसका एक प्रैक्टिस, एक रेगुलर वे में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीका अपनाना चाहिए। इसके लिए मैं जाकर के तुरंत अपने अधिकारियों से मैं बात करूंगा।
इंडियन नेवी में 2016 से 2018 तक ऑफिशियली नेवल हेडक्वार्टर सहित ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न कमांड्स में इरेडिकेशन ऑफ स्ट्रेस एंड एनहांसिंग इनर स्ट्रेंथ विषय पर प्रोग्राम्स किए गए। इसके साथ ही 2016 से 2018 तक कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स के आदेश अनुसार उनके 16 मुख्य स्थान जैसे ओखा, कोच्चि, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर, रामेश्वरम, पारादीप आदि में तनाव मुक्ति कार्यक्रम कराए गए। उत्तर भारत की दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा करने वाले ITBP कर्मियों के लिए श्रीनगर, लेह, लोहितपुर, तेजू, गैंगटॉक आदि में कार्यक्रम कराए गए, जहां SSB के सभी फ्रंटियर्स में सेल्फ एम्पावरमेंट के कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। वहीं NSG के हब्स चेन्नई, हैदराबाद, मानेसर और अहमदाबाद में भी कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। वर्ष 2018 में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स CRPF के सभी सेक्टर्स में कार्यक्रम कराने का लिया गया। इसके अंतर्गत नवी मुंबई, गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतला, भुवनेश्वर आदि में कार्यक्रम किए गए। दिल्ली के निकट ओम शांति रिट्रीट सेंटर के सुंदर प्रांगण में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 2 दिवसीय रेजिडेंशियल प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया, जैसे श्री राजेंद्र सिंह, DG कोस्ट गार्ड, श्री OP सिंह, DG CISF, वाइस एडमिरल AK चावला, चीफ ऑफ पर्सनल इंडियन नेवी आदि। राज्य पुलिस बलों के लिए पहली बार 2018-19 में राजस्थान के DGP OP गल्होत्रा जी की प्रेरणा से 33 जिला पुलिस मुख्यालयों में तनाव मुक्ति कार्यक्रम किए गए। 30 दिसंबर 2018 को SSW के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा, जब स्वयं जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे मुख्यालय माउंट आबू में पधारे। उन्हें SSW द्वारा सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसके फलस्वरूप आर्मी हेडक्वार्टर ने सभी कमांड्स को SSW द्वारा कार्यक्रम कराने की स्वीकृति दी।
मेरे पिताजी स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत आपकी संस्था से जुड़े हुए थे, उनके जरिए मुझे आपकी संस्था के बारे में पूरी जानकारी है। आपकी संस्था के जो सदस्य हैं वो हमारी फौज में, हमारी सेना में लगातार आते रहते हैं और हमारे जवानों का भी इस तरह का मार्गदर्शन जो आप करते हैं वो करते आए हैं।
अप्रैल 2019 से आर्मी के अनेक स्थानों जैसे बारामूला, अखनूर, जामनगर, बाड़मेर आदि में कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। देश के कोने कोने में फैली हुई सुरक्षा बलों को सशक्त करने के लिए SSW सदा प्रतिबद्ध हैं। प्रत्येक वर्ष सभी कार्यक्रमों को करने के लिए SSW की अनुभवी फैकल्टीज हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। SSW फैकल्टीज की निष्ठा, प्रतिबद्धता और निस्वार्थता इस बात से स्पष्ट होती है कि इन पूरे कार्यक्रमों के लिए कोई फीस नहीं ली गई। जनवरी 2020 से पूरे विश्व में कोरोना वायरस के रूप में एक आधुनिक चुनौती सामने आई। इसको नियंत्रण करने के लिए सख्त और दीर्घकालीन लॉकडाउन पूरे देश में किए गए। भय और अनिश्चितता के इस दौर में भारतवर्ष के सुरक्षा कर्मियों ने फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स बनकर अपनी जान की भी परवाह न कर देशभक्ति की एक श्रेष्ठ मिसाल कायम की। ऐसी विकट परिस्थितियों में SSW ने इन वीरों को आंतरिक रूप से सशक्त करने के लिए विशेष ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन कराया। ऑनलाइन कार्यक्रम के अनेक फायदे हैं, इसको आयोजन करना सहज है, इसमें कोई आर्थिक बोझ नहीं है। अधिक से अधिक सुरक्षा कर्मी विभिन्न स्थानों पर सहज रूप से लाभ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूर बैठे अच्छे से अच्छे SSW फैकल्टीज की सेवाएं सहज ली जा सकती है। इन्हीं कारणों से अनेक राज्यों की पुलिस के लिए स्व सशक्तिकरण के कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन कराया गया, जैसे कि केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड, दिल्ली आदि। इसी श्रृंखला में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सभी 17 जोन्स में ऑनलाइन कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम की उपयोगिता और पहुंच इस उदाहरण से समझी जा सकती है कि इंडियन नेवी के दक्षिणी नौसेना कमांड में सिस्टर शिवानी के एक कार्यक्रम का लाभ 7 राज्यों में फैले लगभग 35 यूनिट्स में बैठे हुए 5000 नौसैनिक अधिकारियों एवं सेलर्स ने एक साथ लिया। अनेक स्थानों पर सुरक्षा बलों के साथ साथ उनके परिवारों ने भी लाभ लिया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए पहली बार मार्च 2021 में हमारे सैन्य बलों के वेटरन्स के लिए भी कार्यक्रम कराया गया। सुरक्षा बलों के असीम त्याग और बलिदान के लिए हर एक भारतीय कृतज्ञ और ऋणी है। इन वीर जवानों को आंतरिक रूप से सशक्त बनाना ही हमारा उनके प्रति सच्चा सम्मान और हार्दिक आभार है। जय हिंद।
यदि आपसे पूछा जाए कि आप कितना किलोग्राम वजन उठा सकते हैं, तो आप कहेंगे 25, 50, 100, कोई 150, कोई 200। आप तो वैसे भी आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से या अन्य सुरक्षा बलों से जुड़े हुए हैं, तो लगातार आप अभ्यास करते हैं, तो संभवतः आप ज्यादा भी उठा सकते हो। लेकिन मैक्सिमम आप सोचिए आप कितना उठा सकते हैं। या किसी महिला से पूछा जाए तो उनका क्या जवाब होगा? तो ये कहेंगे कि शायद 10, 15, 25, 50। लेकिन एक सत्य घटना, एक महिला अपने किचन में कार्य कर रही है, उनका बेटा, छोटा बेटा, बाहर खेल रहा है। अचानक एक बाहरी वाहन के पलटने की आवाज आती है, बच्चे के चीखने की आवाज आती है। महिला भाग के बाहर जाती है, देखती है कि एक भारी वाहन जिसका वजन बहुत ही ज्यादा था, लगभग 1000 केजी तक, बच्चा नीचे है। महिला क्या करेगी, आसपास कोई नहीं है। आश्चर्य होगा आपको कि उस महिला ने उस भारी वाहन को, जो इतना वजनी है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, तब तक उठा के रखा जब तक कि बच्चा बाहर नहीं आ गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारी आंतरिक क्षमता, योग्यता और शक्तियों के बारे में सचमुच हम अनभिज्ञ रहते हैं, या है लेकिन उन्हें इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए उनके बारे में जानना और समझना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए विषय यही रखा गया है आज के प्रथम सत्र का, सेल्फ रियलाइजेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग ट्रू पोटेंशियल। मेरी आंतरिक क्षमताओं को यदि मैं जान जाता हूं, समझ जाता हूं, तो आज मैं जो कर रहा हूं उससे कितना गुना ज्यादा बेहतर मैं कर सकता हूं, ये हम समझ सकते हैं। आइए अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार शुरुआत करते हैं अपने बड़ों की दुआओं और शुभकामनाओं के साथ। हमारे बीच आ रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसके सेक्रेटरी जनरल आदरणीय निर्वैर भाई जी, जिन्होंने नेवी में भी अपनी सेवाएं प्रारंभ में दी हुई हैं और वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारी इसके आधार स्तंभ बनकर देश विदेश में अध्यात्म की जो अलख है वो जगा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ होंगे श्री कुमार राजेश चंद्र जी, IPS डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल। आइए इनके सुंदर आशीर्वचन से आज के सत्र की शुरुआत करते हैं।
ओम शांति। यज्ञ रक्षक, विश्व रक्षक, परमपिता परमात्मा शिव की प्रिय संतानों, विशेष रूप से जन जन की सेवा के निमित्त सिक्योरिटी सर्विसेज, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और उसके साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और अन्य प्रकार की जो भी सेवाएं हैं उनसे संबंधित विशेष रूप से भिन्न भिन्न स्थानों पर ऑनलाइन इस कॉन्फ्रेंस से संबंधित जिसमें टॉपिक विषय है इनर स्ट्रेंथ की टू ओवरकम चैलेंजेस, इनर स्ट्रेंथ की टू ओवरकम चैलेंजेस। देखा गया है कि वर्तमान युग हर दिन नई चुनौतियां लेकर आ रहा है। पहले केवल सिक्योरिटी के हिसाब से क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी या तो अंदर की देश की हर तरह से शांति से चलने के लिए हर प्रकार की सिक्योरिटी, लेकिन इस समय तो बहुत ही चुनौतियां आ रही हैं। और जब से ये कोरोना वायरस आया है तो इसने तो और ही ज्यादा सबको हैरान कर दिया है। तो ऐसी चुनौतियों के समय हम सब, चाहे हम आर्म्ड फोर्सेस में हैं, चाहे और भी भिन्न भिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं उनमें हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैंने देखा है कि रेस्ट भी नहीं मिलती है, कई बार दिन रात सेवाएं जो हैं, मैं देख रहा हूं इन दिनों में कैसे हमारे भारतीय सेनाओं के जवान और उसमें भी विशेष एयरफोर्स के जवान और उसके साथ साथ बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स CISF अन्य प्रकार की जो भी सेवाएं हैं बहुत ही दिल से हर एक अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसमें खास दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो धैर्यता चाहिए, धीरज ना खोएं कभी, और दूसरा है इमीडिएट एक्शन की बात। जैसी चुनौती सामने आती है तो उसके लिए बहुत तीव्रता से क्विक एक्शन लेने की जरूरत रहती है। एक्शन भी राइट होना चाहिए तो हमारी जो सोच है, हमारी जो निर्णय शक्ति है उसका उपयोग इसमें होता है। अगर कोई व्यक्ति खासकर आर्म्ड फोर्सेस में जो है, मैं जानता हूं अंदर से गॉड फियरिंग होते हैं, भगवान में विश्वास भी रखते हैं और भगवान से डरते भी हैं। हालांकि मैं कहूंगा मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, भगवान हम सर्व आत्माओं का परम पिता है और उनसे डरने की बात नहीं है, लेकिन अपने आप को अपने मनोबल को सदा ऊंचाई में रखना, सशक्त रहना और अपनी निर्णय शक्ति को हमेशा क्रिस्टल क्लियर रखना, इन बातों के लिए देखा गया है कि अगर हम सवेरे सवेरे जिस समय भी उठते हैं तो परमात्मा पिता को गुड मॉर्निंग करें, गॉड से गुड मॉर्निंग करना, तो सारा दिन गुड ही गुड जाएगा। अर्ली मॉर्निंग थोड़ा टाइम अपने लिए साइलेंस में मेडिटेशन करना, मन को परमात्मा के उस ज्योति स्वरूप पर केंद्रित करना, स्वयं को भी आत्मा रूप में ज्योति स्वरूप आत्मा हूं निश्चय करना, इससे देखेंगे कि आपको उस पिता परमात्मा की सुरक्षा भी मिलेगी, मन को शांति भी मिलेगी और मनोबल भी बहुत सशक्त होगा हर चुनौती का सामना करने के लिए। जो आपके अंदर विशेषता है वो उस पिता परमात्मा की याद की शक्ति से सब भरपूर हो जाएंगी। तो आपकी ये जो कॉन्फ्रेंस मैं देख रहा हूं 22 और 23 मई को ऑनलाइन रखी है, अवश्य ही मैं समझता हूं उसमें आप सब पार्टिसिपेट करके स्वयं को सशक्त भी बनाएंगे, एनरिच भी करेंगे और सारे भारत को, सारे विश्व को अपना समय के अनुसार जिगरी योगदान भी देंगे। तो आपके कॉन्फ्रेंस के लिए, उसकी सफलता के लिए मेरी तरफ से आप सब को बहुत बहुत बधाई भी हो और उसकी सफलता के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।
सर्वप्रथम मैं आपको और आपके संगठन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के कार्य और आंतरिक सुरक्षा के कार्यों में कर्तव्यों के निर्वहन में हमेशा ही उच्च स्तरीय मनोबल एवं आत्मविश्वास का होना अत्यावश्यक है। यह हमारे जवानों के उच्च स्तरीय मनोबल और आत्मविश्वास का ही नतीजा है कि देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा कार्यों को वो बखूबी निभा पा रहे हैं। अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हर बलकर्मी को अनेक शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक समस्याओं से जूझना पड़ता है। इस कार्य के लिए उन्हें धैर्य एवं साहस की आवश्यकता होती है। संसार के अंदर शायद ही ऐसा कोई इंसान है जिसे बिना बाधाओं और मुश्किलों के सफलता प्राप्त हो गई हो। कड़ी मेहनत और मस्तिष्क की एकाग्रता से ही सफलता के शिखर को प्राप्त किया जा सकता है। आत्मबल एक ऐसा गुण है जो हर बलकर्मी को उसके मुश्किल क्षणों में ऊर्जा का स्रोत साबित होता है। यह हमें न सिर्फ दृढ़ संकल्पी और साहसी बनाता है बल्कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अदम्य इच्छा शक्ति भी प्रदान करता है। यह हर जवान को विषम परिस्थितियों से निकलने की हिम्मत भी देता है। यह हर जवान का ऐसा बलवान साथी है जो उसे कभी कमजोर नहीं होने देता। आत्मविश्वास वह ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाली अड़चनों, कठिनाइयों और परेशानियों से मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को मनोबल प्रदान करता है। बिना आत्मविश्वास के कोई भी व्यक्ति सफलता की राह पर एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता। जब तक आपके ऊपर खुद विश्वास ना हो तो आप कोई भी काम कर पाने में सक्षम नहीं होंगे। आत्मविश्वास से हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है और फलस्वरूप बढ़ती है हमारी आत्मशक्ति, हमारा मनोबल। आत्मविश्वास मनुष्य के अंदर ही समाहित होता है, बस जरूरत है अपने अंदर की आंतरिक शक्तियों को इकट्ठा करने और उसे मजबूत करने की। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे वर्दीधारी संगठनों में तो इन मूल्यों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इन बलों के जवानों को अनेक कठिन और असहज परिस्थितियों में रहकर कार्य करना होता है। ऐसे में केवल शारीरिक बल ही विकास से कर्तव्यों का निर्वहन का संपादन संभव नहीं है। इसके लिए बल कर्मियों में आत्मविश्वास का होना अत्यावश्यक है। यह उनके और उनके परिजनों के भी हितों का ध्यान रखता है, जिससे कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी लगन और ईमानदारी से कर सकें। इसी को ध्यान पर रखकर समय समय पर जवानों और अधिकारियों को बातचीत कर उनकी मनोदशा, उनकी व्यक्तिगत समस्याओं, इनसे रूबरू होकर उनकी समस्याओं का त्वरित निपटारा करना अत्यावश्यक होता है, जिस दिशा में लगातार हमारे संगठन के द्वारा प्रयास किया जाता रहा है। मेरा यह मानना है कि हर बलकर्मी हर दम अपने आत्मबल के माध्यम से आगे बढ़ते रहने का प्रयास अगर करते रहे तो कोई भी समस्या और परेशानी उसे छू भी नहीं पाएगी। इसलिए सभी सशस्त्र बलों के बलकर्मियों से मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने कार्यों के निर्वहन के क्रम में आप हर समस्याएं और परेशानियों को समझते हुए अपने मस्तिष्क को एकाग्र बनाएं, ताकि आप हर समस्या और परेशानी से निपट सकें और अपने दायित्वों को बखूबी निभा सकें, क्योंकि आप ये मानकर चलें कि ये दायित्व काफी चुनौतीपूर्ण है। एक बल तभी अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सही तरह से निर्वहन कर सकता है जबकि उसके जवानों का आत्मविश्वास और मनोबल मजबूत हो। इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि अधिकारियों के द्वारा अपने जवानों से निरंतर संवाद बनाए रखा जाए और जवानों की पेशागत क्षमता के साथ साथ उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को भी निपटारा करने का प्रयास किया जाए। उचित प्रशिक्षण भी जवानों में आत्मबल बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। इसके अलावा खेल एवं योग भी जवानों के आत्मविश्वास को बढ़ाने का अत्यंत ही सशक्त माध्यम है। मैं बताना चाहूंगा कि सशस्त्र पुलिस बलों में आमतौर पर एक जवान काफी अधिकार रखता है और वह इन अधिकारों के इस्तेमाल अपनी मानसिक क्षमता से करता है जो उसके मूल्यों, प्रशिक्षण, ज्ञान, कौशल, अनुभव इत्यादि से प्राप्त होता है और यही उसके मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह देखने में आसान जरूर लगता है लेकिन सशस्त्र बलों के जवानों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना इतना भी आसान नहीं होता। अगर उसने क्षण भर में कोई निर्णय लेना है तो उसका मनोबल और आत्मविश्वास ही एक सही निर्णय लेने में उसकी मदद करेगा। एकता की शक्ति से कौन परिचित नहीं है। सशस्त्र बलों का प्रत्येक सदस्य उसी तरीके से एक गठर में बंधा हुआ है। तन पर वर्दी, सिर पर सत्यमेव जयते और कर्तव्य के प्रति निष्ठा और जज्बा ही उनको आत्मविश्वास से भर देता है। देश के प्रति बलिदान इसका परिचायक है। मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे अपने विचार से व्यक्त कर आपको यह संदेश देने के लिए अनुरोध किया, जिसके लिए मैं आपका पुनः आभारी हूं। जय हिंद।
दिल की दुआएं, शुभकामनाएं और आशीष सचमुच हमें प्रेरित करती हैं, आगे बढ़ने में बहुत मदद करती हैं। हमारी बड़ों की जो दुआएं हैं हमें पंख से लगा देते हैं कि आगे बढ़ो, उन्नति करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे बड़ों की दुआओं के लिए दिल से शुक्रिया। वो कहते हैं कि हमारे जितने भी वेद शास्त्र हैं उन सब का एक ही सार है, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। अपने आप को जान लिया तो जग को जान लेंगे, सब कुछ जान लेंगे, जीवन के ध्येय को समझ जाएंगे, मानवता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, उसे हमें कैसे निभाना है ये समझ लेंगे। ये सारी शास्त्रों का निचोड़ है। इसीलिए विवेकानंद जी भी कहा करते थे कि यदि आप हर दिन अपने आप से नहीं मिलते तो जैसे आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना भूल जाते हैं, हम सबसे मिलते हैं खुद से कितना मिलते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि आए कुछ पल अपने साथ बिताएं, अपने आप से मिलें, खुद को जानें, खुद को समझें। तो आइए शुभकामनाएं लेते हैं अब स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड अशोक गाबा जी से, जो कि सिक्योरिटी सर्विस विंग के चेयरपर्सन हैं। 1971 से आप राजयोग का सुंदर गहन अभ्यास कर रहे हैं और इस विंग की स्थापना से लेकर अब तक आपका योगदान अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। साथ ही आईटीबीपी के जवान अर्जुन जी एक सुंदर सा गीत प्रस्तुत करेंगे और पश्चात राजयोगी ब्रह्म कुमार सूर्य भाई जी, जिन्हें आप टेलीविजन पर देखते होंगे, जिनके हजारों लेक्चर्स यूट्यूब में हैं, जो सबको प्रेरित करते हैं, उमंग उत्साह से भरते हैं, आंतरिक क्षमताओं और योग्यताओं से अवगत कराते हैं, आदरणीय सूर्य भाई जी भी हमारे साथ होंगे अपनी शुभकामनाओं के साथ। आइए स्वागत करते हैं।
मैं ऑनलाइन के प्रोग्राम में आप सभी का वेलकम करता हूं एज ए चेयरपर्सन। अर्लियर अटल दीदी वाज द चेयरपर्सन, स्पेशली दी फैमिलीज एंड ऑफ दी आर्म फोर्सेस, दे आर मोस्टली स्ट्रेस मोर ऑफन, इट नीड्स टू बी लिंक्ड स्ट्रेस रिलीज प्रोग्राम। सो आई वेलकम यू टू ऑनलाइन प्रोग्राम आप ब्रह्मा कुमारीज। मैं कोरोना काल में स्पेशली आपकी फैमिलीज को और पुलिस को और आर्म फोर्सेस को ब्लेस करना चाहता हूं, क्योंकि आप जब कभी भी विकट समय आता है तो चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई हो या ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई हो, स्पेशली एमरजेंसी को मीट करते हैं। सो वी आर थैंकफुल टू यू, ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू। देयर वाज़ अ सॉन्ग, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम्, वंदे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, शस्य श्यामलां मातरम्, वंदे मातरम्, शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभासिनी सुखदामलदा मातरम्, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्, वंदे
ओम शांति। वर्तमान समय संसार में अनेक चुनौतियां, अनेक समस्याएं उग्र रूप लेती जा रही हैं। ऐसे में मनुष्य के मन का धैर्य, उसके मन की स्थिरता, उसके चित्त की शांति और उसका मनोबल उसको सही राह दिखा देता है। समस्या आने पर यदि मनुष्य का मन विचलित हो जाता है, नर्वस हो जाता है, तो हम देखते हैं समाधान उसके आसपास ही है लेकिन वो उसे दिखाई नहीं देता। ऐसी बीमारियां बढ़ गई हैं। इन बीमारियों में मनुष्य को मनोबल की सबसे अधिक आवश्यकता है। मनोबल कमजोर होने से मनुष्य पैनिक हो रहा है, वो भयभीत हो रहा है और इस भय में उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा है, तो छोटी समस्या बड़ी होती जा रही है। समस्याएं तो जीवन में हैं। लोग कहते हैं ना, जीवन संघर्ष का नाम है, लाइफ इज स्ट्रगल। लेकिन ये संघर्ष यदि मनुष्य को डाउन कर दें, ये संघर्ष यदि मनुष्य को कमजोर कर दें, ये संघर्ष यदि उसके विवेक को ही नष्ट कर डालें, तो वो संघर्ष तो अभिशाप बन जाते हैं। लेकिन वो मनुष्य जो संघर्षों से अपनी विवेक शक्ति को बढ़ा ले, जो संघर्षों में अपने मनोबल को और ऊंचा कर ले, जो और धैर्यवान बन जाए, उसके लिए ये संघर्ष वरदान बन जाते हैं। तो हम सभी जहाँ बाह्य साधनों पे ध्यान दे रहे हैं, हम इस बात पर भी ध्यान दें कि हम अपनी मन की शक्ति को, जिसे हम इनर पावर कहते हैं, उसको बहुत बढ़ाएं। हम आपके सामने रखना चाहते हैं ये इनर पावर क्या, इसको इनर क्यों कहा। आउटर एक्सटर्नल ये शरीर की शक्ति है और आंतरिक शक्तियां, आंतरिक बल, ये मन का बल है। अब वास्तव में जिसको हम बल कहते हैं, जिसको हम शक्ति कहते हैं, वो शरीर से ज्यादा मन में बसती है। मन यदि शक्तिशाली है तो बाहर से दिखने वाला दुबला पतला व्यक्ति भी बड़े बड़े काम कर लेता है। और मन यदि कमजोर हो गया, मन यदि भय से ग्रस्त हो गया, तो एक शक्तिशाली व्यक्ति भी हार मान लेता है। तो हम सभी इस इनर पावर को समझ लें। इनर पावर आंतरिक शक्ति इस चेहरे के अंदर में है, चैतन्य आत्मा इस शरीर को चलाने वाली, और उस आत्मा की एक शक्ति है मन, दूसरी शक्ति है बुद्धि। इन दोनों के बैलेंस से ही मनुष्य का जीवन चलता है। तो बुद्धि में विवेक है, मन में बल है, शक्ति है। ये बात हम सभी को जाननी चाहिए। आजकल का बुद्धिमान मनुष्य भी इस बात को बहुत कम समझ रहा है कि बहुत ज्यादा सोचने से मनुष्य के मन की शक्तियां नष्ट हो रही हैं। उसको जो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं नेट से, सोशल मीडिया से बहुत सारी न्यूज इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं, उससे उसका मन कंफ्यूज हो रहा है। बल केवल शरीर में नहीं, हमें इस बल को, जो आत्मिक बल है, जो मन का बल है, इसको बढ़ाने की सोचनी होगी। अब इस पर चर्चाएं भी होनी चाहिए, विशेष करके हमारी जो युवा पीढ़ी है, जिसमें भारत की जनसंख्या का 60% से भी ज्यादा है, उनको मनोबल बढ़ाने पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर मन में विकार हैं, अगर मन में बुराइयां हैं, अगर मन में दूसरों के लिए गलत भावनाएं हैं, तो हमें जान लेना चाहिए हमारी मन की शक्तियां नष्ट हो रही हैं। और जब मन की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, तो तन में भी अनेक विकृतियां आ जाती हैं। ये रहस्य भी मनुष्य को भूलना नहीं चाहिए। मन की शक्ति बीज है अन्य अनेक शक्तियों की। एक मनुष्य एक बड़ी पोस्ट पर है, वो कमिश्नर है, उसके पास कई शक्तियां हैं। युद्ध हो रहा है, एक मनुष्य जनरल है, उसके पास कई पावर्स हैं, परंतु यदि उसका मन पावरफुल ना हो, यदि उसकी बुद्धि स्थिर ना हो, यदि उसके पास एक सुंदर संतुलन ना हो, तो वो समय पर सही डिसीजन नहीं ले सकेगा। इसलिए मन को शांत भी करना है और पावरफुल भी बनाना है। हमारी सही निर्णय बुद्धि तब लेती है जब हमारा मन पूरी तरह शांत हो। और हमें जानना चाहिए, मन जितना शांत है उतना ही मन पावरफुल है, और मन जितना विचलित है, मन जितना वेस्ट थिंकिंग में है, मन जितना नेगेटिव थिंकिंग में है, मन उतना ही वीक होता जा रहा है। जैसे हमारी बैटरी होती है हमारे फोन की, हम उसे यूज करते जा रहे हैं, हम नेट का ज्यादा यूज कर रहे हो तो तेजी से हमारी बैटरी डाउन होती जाएगी ना। हम ऐसे ही फोन करते हो तो ज्यादा डिस्चार्ज नहीं होगी बैटरी। वैसे ही मन अगर बहुत नेगेटिव है, अगर उसमें विचारों का तूफान चलता है, चाहे वो किसी भी कारण से चल रहा हो, समस्या आने पर चल रहा हो, किसी के द्वारा दुर्व्यवहार होने पर चल रहा हो, कहीं हम फेलियर हो गए हो तब चल रहा हो, तो हमें जानना चाहिए हमारी मन की बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती जा रही है। और आजकल क्योंकि मन की स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है तो ये तेजी से डिस्चार्ज हो रही है। नॉर्मल माइंड में मनुष्य के मन में संकल्पों की स्पीड 25 थॉट्स पर मिनट होनी चाहिए, पर आजकल ये 40 से भी ज्यादा तक पहुंच गई है मनुष्य के मन में। इसलिए तेजी से शक्तियां नष्ट होती जा रही हैं, और यही कारण है कि छोटी समस्या भी मनुष्य को बहुत भारी दिखाई दे रही है। बात बहुत छोटी होती है उसे फीलिंग ज्यादा आती है, किसी ने थोड़ा कुछ कहा वो अपमानित अपने को फील करता है, उसकी खुशी नष्ट हो जाती है, उसके संबंधों में कड़वाहट आ जाती है। तो हमें बहुत ध्यान देना है। अब जैसे हम और चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, उदाहरण ही ले ले वर्तमान का कोरोना चल रहा है, हम दवाइयों पर ध्यान दे रहे, ऑक्सीजन पे ध्यान दे रहे, इंजेक्शन पर, बहुत सारी सुविधाएं पेशेंट्स को मिले, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। वैसे ही हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि उनका मनोबल बढ़ा चढ़ा रहे, वे पॉजिटिव रहें, वे घबराएं नहीं, वे निराश ना हो, वे ये संकल्प बार बार न करें कि पता नहीं क्या होगा। मनुष्य को अपने से ज्यादा होता है अपने परिवार का, पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा। अनेक बातें परिवारों में होती हैं, वो उसको चिंताग्रस्त करती हैं, तो मनुष्य का मनोबल डाउन होने लगता है। अब हमें इसको बढ़ाना है। देखिए ये कोई ऐसी चीज तो नहीं कि खा पी कर बढ़ा दी जाए, कोई ड्राई फ्रूट्स खा लो मनोबल बढ़ जाएगा, कोई पौष्टिक चीजें खा लो मनोबल बढ़ जाएगा। मन को पहले तो हमें पॉजिटिव करना है, मन की स्पीड को स्लो डाउन करना है। अभी ये भी किसके हाथ में है क्या, लेकिन ये हमारे हाथ में है। यदि आप ये अभ्यास करेंगे, मैं चैतन्य आत्मा हूँ यहाँ दोनों प्रकृतियों के मध्य में, आप आत्मा पर केंद्रित करने लगे एक एक मिनट, सवेरे उठ के करने लगे, जब मन बहुत शांत होता है आप सवेरे उठकर आत्मा पर केंद्रित करने लगे। आत्मा जो सटल पॉइंट ऑफ एनर्जी है, पॉइंट ऑफ लाइट है, उस पर कंसंट्रेट करें। अगर आप 10 सेकंड से शुरू करते हैं, एक मिनट तक ले जाते हैं, तो आपको महसूस होगा आपके मन की स्पीड काफी धीमी होने लगी है। और अगर आप दिन में भी ऐसा करने लगे, सवेरे तो अच्छा समय दे देना चाहिए। दूसरी बात, सवेरे के समय में ही अपने मन के अंदर सुंदर विचारों का सृजन करें, क्रिएट करें। आप हमारे पास सुंदर विचारों का भंडार होना चाहिए, वो सबके पास है, उसको दबा दिया गया है इन बुरे विचारों ने, इस बुरे माहौल ने, कलयुग के बुरे प्रभाव ने। हम कुछ अच्छे साहित्य का अध्ययन करें, व्हाट्सएप पे भी अच्छी अच्छी बातें आती हैं, उन पर चिंतन करें, और रोज सवेरे सुंदर विचारों से अपने मन को भरपूर करें। हमें याद रहे जितने मन में पॉजिटिव एलिवेटेड सुंदर विचार होंगे, मन की स्पीड धीमी होगी, इससे मन हमारा पावरफुल होता जाएगा। क्योंकि एक एक विचार हमारे मन को एनर्जी दे रहा है, एक एक सुंदर संकल्प से एनर्जी जनरेट हो रही है। तो हम सवेरे उठकर सुंदर विचारों से अपना श्रृंगार करें। उठते ही अखबार पढ़ लेना, उठते ही टीवी खोल देना, आजकल फोन का जमाना, उठते ही व्हाट्सएप, फेसबुक और क्या क्या स्टेटस पे देखने लगना, इससे हमारे जो श्रेष्ठ विचार हैं वो दबते और मरते जा रहे हैं, दूसरों के विचार हमारे मन पर हावी होते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती हो रही है आज बुद्धिमान मनुष्य से। हमें अपने मन को मोस्ट एलिवेटेड थिंकिंग देनी चाहिए सवेरे सवेरे। तीसरी बात, हम कुछ मेडिटेशन करें अपने परम पिता से, सर्वशक्तिवान से अपने मन बुद्धि को जोड़ें, इसको राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। जब हम सर्वशक्तिवान सत्ता से जुड़ेंगे, जब हम उसको विजुअलाइज करेंगे, उस पर कंसंट्रेट करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, तो उसकी शक्तियां हम में समाने लगेंगी। आप फील करेंगे उसकी शक्तियों का एक फ्लो आप में समा रहा है। थोड़ी थोड़ी देर भी आप इस पर एकाग्र होंगे तो आपको दिखाई देगा मन आनंदित हुआ, मन पीसफुल हुआ, मन पावरफुल हुआ। सोने से पहले भी ऐसा ही कर लेना चाहिए, ताकि सारे दिन के जो विचारों का इफेक्ट मन पर था उसको हम समाप्त करके, उसको डिलीट करके फ्रेश विचारों के साथ सोएं। ये बहुत बड़ी गलती मनुष्य कर रहा है कि वो सोता है तो सारे दिन के अनेक विचारों को लेकर सोता है, इससे मन निगेटिव होता है। जिस विचारों में हम सोते हैं वही विचार उठते ही हमारे मन पर हावी हो जाते हैं। तो चलें हम इन साधनों से, स्पिरिचुअलिटी से, हमारे यहाँ एक और स्वमान की प्रैक्टिस है स्पिरिचुअलिटी में, इन सब की प्रैक्टिस करते हुए अपने मन को शांत करें, शक्तिशाली बनाएं, अपने मनोबल को बहुत बढ़ा दें और रोज सवेरे याद दिलाया करें, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय तो हमारी होनी ही है, हम ही विजयी होंगे। इस तरह सुंदर और पावरफुल विचार हमारे मन को सशक्त करेंगे और हम इन चैलेंजेस को हंसते हंसते पार कर सकेंगे। ओम शांति।
मित्रों, 26 जनवरी 2001 आपको याद होगा, गुजरात में आया बहुत ही भयंकर भूकंप। यद्यपि हम इसे याद नहीं करना चाहेंगे, एक भयावह घटना थी, लेकिन एक घटना जो हमारी आज के विषय से जुड़ी हुई है, एक कंप्लीटली पैरालाइज्ड पेशेंट भुज के हॉस्पिटल में लेटा हुआ, जैसे ही भूकंप आया सभी भागने लगे। अन्य दिनों में लोग उनके पास बैठते थे, पूछते थे, हालचाल लेते थे, लेकिन आज कोई देख ही नहीं रहा था, सब अपनी अपनी दौड़ में लगे हुए थे। अब इसे लगा कि दीवारें हिल रही हैं, छत कभी भी मेरे ऊपर आ सकता है। अपनी पूरी शक्ति समेटे इन्होंने, और आश्चर्य की ही बात थी कि वो उठे, बैठे, चलने लगे और एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। बहुत ही गहन सी बात है, इसे चमत्कार भी कह लें, लेकिन यदि विज्ञान की भाषा में हम कहें तो अंदर की शक्तियां जो अद्भुत हैं, जिनके बारे में शायद हम नहीं जान पाते हैं या जिन्हें यूज नहीं करते, वो जब ऐसी परिस्थितियों में जागृत हो जाती हैं तो हम कुछ अद्भुत कर जाते हैं। और इसीलिए तो सेल्फ रियलाइजेशन की जरूरत है। तो आज का जो सुंदर विषय है, सेल्फ रियलाइजेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग ट्रू पोटेंशियल, उस पर अपने सुंदर विचार लेकर के, इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच आ रही हैं ब्रह्मा कुमारी दीपा बहन जी, जो कि वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, मुंबई से हैं। बाल्यकाल से ही आप राजयोग का गहन अभ्यास कर रहे हैं, कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में आप अपने वक्तव्य देती रहती हैं, साथ ही आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और अन्य जो सुरक्षा बल हैं वहां पे भी आपने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ होंगे लेफ्टिनेंट कर्नल विकास चौहान जी, जो कि 25 वर्षों से जिन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी, 21 वर्ष से आप भी राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। कैसे मेडिटेशन, राजयोग हमारी आंतरिक क्षमता को जागृत करता है, उस पर आप अपने अनुभव युक्त बातें रखेंगे, और साथ ही परमात्मा के प्यार का एक सुंदर गीत भी प्रस्तुत करेंगे। आइए स्वागत करते हैं।
ओम शांति। कुछ समय पहले हमने आदरणीय सूरज भाई से बहुत अच्छी बातें सुनी कि मन को कैसे सशक्त रखना है, मनोबल को बढ़ाना है, बुद्धि की परख शक्ति और निर्णय शक्ति का विकास करना है। और ये सब बातों को करने के लिए ये सब शक्तियां जो है वो हमारे आंतरिक स्व से जुड़ी हुई है, इसलिए अपने आंतरिक स्व का परिचय होना बहुत आवश्यक है। जैसे हम अपने आप को देखते हैं या कहां भी अपना परिचय भी देते हैं तो अपना नाम बताते हैं, कार्य बताते हैं, जो स्थान पर हम रह रहे हैं, हमारे परिवार के सदस्य, हमारा धर्म, हमारी भाषा, ये सब जानकारी जब हम अपने बारे में देते हैं तो ये सारी जानकारी हमारे बाह्य व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है, जिसके लिए हम मेरा शब्द कहते हैं। मेरा नाम, मेरा कार्य, मेरा धर्म, मेरी भाषा, मेरी योग्यताएं, मेरे अनुभव, तो ये मेरा शब्द अर्थात जो चीजें मुझे बिलोंग करती हैं। लेकिन मैं कौन? अब ऐसे तो कहा जाता है कि मैं मनुष्य हूं, ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन जो है वो ग्रीक वर्ड ह्यूमस से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है मैटर, स्थूल, मिट्टी। अर्थात जैसे गायन भी किया जाता है कि शरीर जो है वो मिट्टी का बना है और मिट्टी में मिल जाना है, तो ये शरीर को चलाने वाली जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो हमने कहा ह्यूमन बीइंग, तो बीइंग अर्थात वो आध्यात्मिक ऊर्जा जो सूक्ष्म है, और ये ऊर्जा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, जिसके लिए गीता में भी लिखा गया है कि मस्तक के बीच चमकता है वो सुंदर अजब सितारा। तो ये हमारा आंतरिक व्यक्तित्व है। बाह्य व्यक्तित्व के बारे में तो हम जानते ही हैं, इसके बारे में हम औरों को भी परिचय देते हैं, लेकिन आज हम परमात्मा के द्वारा, जो राजयोग की शिक्षाओं के द्वारा हमें परिचय परमात्मा ने स्वयं का दिया है, उसके बारे में देखेंगे कि यह आंतरिक स्व अर्थात एक सुंदर आध्यात्मिक दिव्य शक्ति है, मस्तक के बीच चमकता हुआ ये बहुत सुंदर दिव्य सितारा है। मन की आंखों से इसको हम महसूस कर सकते हैं, और ये दिव्य सितारा जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, सोल कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, साइंस के द्वारा मेटाफिजिकल सेल्फ कहते हैं, ये ऊर्जा जो है इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। अगर उदाहरण के रूप में हम इस शरीर को एक व्हीकल के रूप में देखें, गाड़ी के रूप में देखें, तो ये ऊर्जा जो है ये इसकी चैतन्य लिविंग ड्राइवर है, तो इसको चलाने वाली शक्ति हो गई। तो हम देखते हैं कि आत्मा जिस जो इस शरीर को चला रही है उसके पास तीन मुख्य शक्तियां हैं। जैसे ही शरीर के अलग अलग फिजिकल ऑर्गन्स हैं जिसके द्वारा हम कर्म कर रहे हैं, जैसे इस समय मुख के द्वारा मैं बोल रही हूं, आप अपने कानों के द्वारा सुन रहे हैं, लेकिन बोलने वाले कौन, सुनने वाला कौन? तो ये शरीर के कर्म इंद्रियों के द्वारा कार्य कराने वाली जो सत्ता है वो ये आध्यात्मिक शक्ति आत्मा है। और आत्मा के पास फिर तीन शक्तियां हैं जिसको हम सूक्ष्म कर्म इंद्रियां या ज्ञान कर्म इंद्रियां कहते हैं। ये सटल फैकल्टीज जो है, इसमें पहली है मन, मन की फैकल्टी, दूसरी है बुद्धि और तीसरा है संस्कार। आज हम ये तीनों बातों को विस्तार पूर्वक देखेंगे, और ये तीनों को सशक्त कैसे बनाना है, इसकी आंतरिक शक्तियों का विकास कैसे करना है, आंतरिक क्षमताओं का विकास कैसे करना है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले है मन, इसी के बारे में हम कई बार वर्णन भी करते हैं कि आज हमारा मन जो है वो इतना ठीक नहीं है, मन थोड़ा तनाव में है, उदास है, मन एकाग्र नहीं हो रहा है। तो मन क्या है? मन है आत्मा की चिंतन करने की, विचार करने की शक्ति, थॉट एनर्जी। तो सुबह से रात तक हम चिंतन कर रहे हैं, बहुत सारे विचारों का निर्माण कर रहे हैं। मन जैसे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, सुबह से रात तक इसका प्रोडक्शन चालू ही है, कितने सारे विचार, लेकिन एक चैलेंज है इस फैक्ट्री में, इस फैक्ट्री में कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। अर्थात हम चिंतन तो कर रहे हैं लेकिन ये कौन सी क्वालिटी के थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं इसकी चेकिंग नहीं है। अगर हम इसका चेकिंग करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि हमारे मन में चार प्रकार के विचारों का निर्माण हो रहा है। एक है सकारात्मक, दूसरे है नकारात्मक। शायद ये दो प्रकार के विचारों के बारे में हम जागरूक हैं और हम लक्ष्य रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक विचार हों। लेकिन तीसरे प्रकार के विचार हैं व्यर्थ विचार, वेस्ट थॉट्स, अनप्रोडक्टिव थिंकिंग, जो विचार से हमें कोई फायदा नहीं है। चौथे प्रकार के विचार हैं हमारी रूटीन, साधारण, जो रूटीन हमें कारोबार करना है, अब ये करना है, इसके बाद ये करना है, वो साधारण विचार। तो अब ये चारों प्रकार के विचारों में से सबसे ज्यादा विचार कौन से चलते हैं? चेक कर लीजिए एक मिनट के लिए कि सुबह से रात्रि तक हमारे सबसे ज्यादा विचार कौन से चलते हैं? चेक कर लिया, क्या रियलाइज करते हैं आप? आज के समय के अनुसार सबसे ज्यादा विचार कौन से चलते हैं? अगर हम ऑनेस्टली चेक करेंगे तो हमें रियलाइज होता है कि हमारे वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं। पॉजिटिव चलते हैं लेकिन कभी कभी, और उन पॉजिटिव थॉट्स में भी दो प्रकार के, एक है अनकंडीशनल पॉजिटिव थिंकिंग और एक है कंडीशनल। अर्थात कुछ सकारात्मक विचार हम जो करते हैं उसमें वातावरण या जिन व्यक्तियों के साथ हम हैं उनका प्रभाव है। हम कहते हैं जब इनके साथ बैठते हैं ना तो बहुत अच्छी बातें होती है, बहुत अच्छा चिंतन चलता है, या ये वातावरण में पहुंचते हैं तो बहुत शांति मिलती है। लेकिन जो हम सकारात्मक चिंतन चाहते हैं वो है अनकंडीशनल, अर्थात नेगेटिव वातावरण में भी हम सकारात्मक सोच सके। जब समस्या का वातावरण है, कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत डिफिकल्ट परिस्थिति है, उसमें भी हम अच्छा सोच सकें, सकारात्मक सोच सकें, समाधान का चिंतन कर सकें। इसलिए कई बार जो सेल्फ हेल्प बुक्स हम पढ़ते हैं या कई लेक्चर्स हम सुनते हैं उसमें बार बार जो हमें कहा जाता है बी पॉजिटिव, तो ये कौन से विचार है? अनकंडीशनल पॉजिटिव थिंकिंग। तो जैसे जैसे राजयोग से हम मन को सक्षम बनाते हैं, हम ये अनकंडीशनल पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाते जाते हैं। और राजयोग के द्वारा हम एक बहुत सुंदर मन को प्रशिक्षण देते हैं, मन को चैनलाइज करते हैं, जिससे जो नेगेटिव वेस्ट और ऑर्डिनरी थॉट्स है उसको पॉजिटिव में चेंज कर सके। जैसे एक रिसाइकलिंग कर लेते हैं, आजकल कई बार हम देखते हैं रिसाइकल करते हैं वेस्ट मटीरियल को, तो उससे कोई ना कोई और अच्छी चीज बन जाती है जिससे और कोई और चीज का उत्पादन होता है। तो ऐसे हम अपने नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स को पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। तो वो ज्ञान से, स्पिरिचुअल नॉलेज से मन को हम ट्रेन करते हैं। तो सारा दिन मन तो सोच ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम मन को बहुत प्यार से, ज्ञान की समझ से ट्रेन करते हैं। मन के साथ एक बहुत सुंदर मित्रता, एक फ्रेंडशिप क्रिएट करते हैं, मन हमारा मित्र बन जाता है। इसे कहा ही जाता है मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड, जो वो आपकी बात सुने, समझे और उसी रूप से दिशा ले सके। आज हम देखते हैं न चाहते भी हमारा मन हमारी बात ही नहीं मानता है, और कई बार हम अपने मन की बात नहीं मानते, अंतर मन की बात। जब भी हम अपसेट होते हैं और हमसे कोई ऐसे शब्द निकल जाता है आवेश में, क्रोध में, तो क्रोध करने के थोड़ा समय पहले, कुछ क्षण पहले, हमारा अंतर मन हमें क्या कहता है? गुस्सा करो कि नहीं करो, क्या करता है? हमने वो आवाज सुनी है तो मोस्टली हम देखते हैं हमारा अंतर मन कहता है कि थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा धीरज रखो, अभी कुछ नहीं बोलो। लेकिन हम वो अंतर मन की बात नहीं मानते, हम अपने आवेश में आ जाते हैं, हमको लगता नहीं नहीं ये जरूरी है, अभी इस समय बोलना है, इसी समय हमको बताना है, कहना है और ठीक करना है। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे राजयोग के अभ्यास से मन को हम शक्तिशाली बनाते हैं, मन को दिशा देने का अभ्यास करते हैं, मन हमारी बात मानना शुरू करता है। मन के साथ हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करके उसको बहुत अच्छा भोजन देते हैं, मन की डाइट को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि मन को जो हम भोजन देते हैं जानकारी के रूप में, उसी प्रकार से वो चिंतन करता है। तो हम देखते हैं कि आज सुबह से रात तक हम मन को क्या फीड कर रहे हैं। बाहर के वातावरण से जो बातें हैं आजकल के, तो न्यूज में हम देखते हैं कुछ क्षण न्यूज सुनो और ही स्ट्रेस हो जाता है, भय हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाता है। तो इससे बहुत आवश्यक है हम सारे दिन में मन को अच्छे अच्छे विचार, शुद्ध सकारात्मक उमंग उत्साह में लाने वाले, हमें प्रोत्साहन करने वाले ऐसे शुद्ध शक्तिशाली डाइट हमें मन को देनी है। और फिर बीच बीच में कुछ समय निकालकर मन से बहुत प्यार से बातें करनी है, तो उसकी हीलिंग होती जाए। अब मन बहुत सारे सोच करता है, लेकिन वो सारा जो चिंतन है उसको समझकर, उसका विश्लेषण करके, उसको एनालाइज करके जो निर्णय लेने वाली शक्ति है वो है बुद्धि। तो बुद्धि क्या करती है, वो एक फिल्टर का काम करती है। तो सुबह से रात्रि तक जो भी हमारे विचार हम क्रिएट कर रहे हैं वो सबको फिल्टर कर लेती है, और जो सही विचार होता है वो कर्म में ले आती है, जो विचार ठीक नहीं है उसको वो छोड़ देती। तो बुद्धि का सक्षम होना, शुद्ध होना, दिव्य होना, शक्तिशाली होना कितना आवश्यक है। तो आज हम देखते हैं कि बुद्धि वास्तव में रियलाइज जरूर करती है, विश्लेषण एनालाइज राइट करती है, लेकिन कब? बुद्धि का काम है कर्म के पहले एनालाइज करके कर्म को दिशा देना। इससे कहा ही जाता है सोच समझकर कर्म करना। तो सोचना मन, समझना बुद्धि, कर्म हमें संस्कार के अनुसार करने। लेकिन हम देखते हैं कि समझना कर्म के पहले नहीं होता है, मोस्टली रियलाइजेशन हम कब करते हैं, कर्म करने के बाद। तो सब कर लिया फिर रियलाइज करते कि अरे नहीं, ऐसा तो हमें नहीं बोलना चाहिए था, उस समय नहीं बोलना चाहिए था, बाद में हम थोड़ा प्यार से शांति से कह देते तो बेहतर था। तो हमारे पास बुद्धि के पास समझ है, रियलाइजेशन पावर है, लेकिन उसको कर्म के पहले हम यूज नहीं कर पा रहे। तो राजयोग मेडिटेशन से हम इस बुद्धि को भी बहुत सुंदर, दिव्य, शुद्ध और शक्तिशाली बनाते हैं, ताकि उसके पास वो परक शक्ति और निर्णय शक्ति हो, वो कर्म करने के पहले हमें गाइड करे और दिशा दे सके। दूसरा हम देखते हैं हमारी बुद्धि जो है उसको त्रिकालदर्शी बनाना है। कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें पास्ट के हमारे अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मिस्टेक्स हमने कर ली है उससे सीख लिया है, तो अभी तो हमें फिर से वो रिपीट नहीं करना है। तो इसलिए पास्ट के हमारे अनुभव को समझते हुए उसके आधार से मुझे अभी के वर्तमान में निर्णय लेना है, और जो मैं निर्णय ले रही हूँ या ले रहा हूँ उसका भविष्य में क्या इम्पैक्ट होगा, मैं जो चाहता हूँ उस दिशा में मैं आगे बढ़ूंगा, उस प्रकार की रिजल्ट मुझे मिलेगी, तो फ्यूचर का क्या इम्पैक्ट है, उसका आउटकम क्या है, उसके बारे में सोचकर समझकर फिर निर्णय लेना है, फिर वर्तमान में आकर निर्णय लेना है। तो पास का अनुभव और फ्यूचर में क्या रिजल्ट होगा वो समझकर फिर वर्तमान में आकर हम निर्णय लेंगे। तो इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी बुद्धि। तो आज हम देखते हैं कि स्ट्रेस के वजह से हमारी बुद्धि एक कालदर्शी हो गई। उस समय हमें जैसा महसूस होता है हम निर्णय ले लेते हैं, उस समय जो रिजल्ट हमें दिखाई देता है उस अनुसार निर्णय ले लेते हैं। तो धीरे धीरे जो परमात्मा हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है और राजयोग के द्वारा शिक्षाएं दे रहा है, उससे हमारी बुद्धि शुद्ध भी बनती जाती है, दिव्य भी बनती जाती है और त्रिकालदर्शी बनती जाती है, बुद्धि सक्षम बनती जाती है कि वो कर्म करने के पहले हमें दिशा दे सके। अब बुद्धि द्वारा हमने कर्म तो कर लिया, डिसीजन ले लिया, अब हमें उसको ट्रांसलेट करना है कर्मों में, हमें प्रैक्टिकल में करना है। तो जब हम प्रैक्टिकल में करना शुरू करते हैं तो उस समय हमारे संस्कार हमें मदद करते हैं। तो जो हमारे कर्म है डेली लेवल पर जो हम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हम पर संस्कार के रूप में पड़ता जाता है, उससे संस्कार बनते जाते हैं। अब ये संस्कार जो है वो डेली लाइफ में हमें प्रभावित करते हैं। जो हम आज कहते हैं कि क्या करें, हमें वास्तव में ऐसा कुछ बोलना तो नहीं था, रिएक्ट करना नहीं था, लेकिन मेरा थोड़ा स्वभाव है, मेरे मन का भाव नहीं था, मेरा स्वभाव है। तो ये स्वभाव संस्कार कैसे बनते, तो हम देखते हैं कि पांच प्रकार से ये हमारे स्वभाव संस्कार होते हैं। पहले संस्कार है जो हमारे पास्ट से जुड़े हुए, प्रीवियस लाइफ से जुड़े हुए, जो संस्कार आत्मा अपने साथ ले आती। तो हम देखते हैं कि एक परिवार में ही बच्चों का जन्म हुआ है, सिबलिंग्स हैं, लेकिन दोनों बच्चों में या तीनों बच्चों में कितना अंतर है उनके स्वभाव में। एक जो है वो बहुत एक्सट्रोवर्टेड है, उसको बातचीत करना अच्छा लगता है, एक्टिविटीज में भाग लेना अच्छा लगता है। दूसरा बहुत शांत है, अपने आप में है, संतुष्ट है, क्रिएटिव है। तो हर एक बच्चे का संस्कार अलग है, पालना वही मिल रही है, परिवार वही है, वातावरण वही है, संस्कार अलग है। आजकल हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, चाइल्ड प्रोडिजीज, छोटी आयु में बहुत सुंदर गीत गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बहुत सारी प्रतिभा उनमें बचपन में दिखाई देती है। तो वो संस्कार उस कला की, उस विशेषता की लेकर आई है आत्मा। कुछ संस्कार हमें हमारे पेरेंट्स देते हैं, माता पिता से वो संस्कार हमें प्राप्त होते हैं। कुछ संस्कार हमें संग से मिलता है, कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनका हम पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, उनके जो विचार हैं, उनके जो एटीट्यूड्स हैं वो हमें इम्पैक्ट करती है, प्रभावित करती है, और हमारे भी ऐसे संस्कार बनते जाते। कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। फिर हम देखते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं वहां समाज और साथ साथ हम अपने पुरुषार्थ से, अपनी समझ से अपने अंदर कुछ संस्कार भरते हैं, चाहे कोई कला के, चाहे प्रोफेशन के, चाहे कोई विशेषता के, योग्यता के, हम उसको सीख कर वो संस्कार अपने अंदर धारण करते हैं, वो टैलेंट वो कलाओं को अपने अंदर विकसित करते हैं। और पांचवे प्रकार के संस्कार जो कॉमन है सब में है, और वो संस्कार है हमारे ओरिजिनल संस्कार, मूल संस्कार, आंतरिक संस्कार, जो ईश्वर के दिए हुए बाय डिफॉल्ट। जैसे हर मोबाइल में कुछ सेटिंग्स होती है, तो कई बार कुछ हम मोबाइल पे काम कर रहे हैं और कुछ डिलीट कर रहे हैं तो तुरंत मैसेज आ जाता है कि ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, अगर आप इसे डिलीट करेंगे तो आपके मोबाइल का सेटअप चेंज हो जाएगा, फिर हम नहीं डिलीट करते। ऐसे आत्मा के ये बाय डिफॉल्ट ओरिजिनल संस्कार है। ये कौन से है? ये सतो संस्कार, जो कहा जाता है कि आत्मा सतो प्रधान है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो शांति कुछ आत्मा का नेचुरल स्वभाव है, नेचुरल नेचर है। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, शुद्ध क्लीन जवाइन। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, हर एक के लिए मन में शुभ भावना, प्यार की फीलिंग। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, समझ, हर दिन कुछ नया जानना है, कुछ नया सीखना है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, मनोबल हिम्मत। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, सदा खुशी में रहना चाहती हूँ, आंतरिक रूप से हमेशा लाइट हैप्पी जॉयफुल रहना चाहती, क्योंकि वो मेरा निज स्वभाव है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं, आनंद की स्थिति, आंतरिक संतुष्टता की स्थिति। तो ये सातों गुण जो है, ये सातों विशेषता, ये हमारे आंतरिक स्वभाव है। और राजयोग मेडिटेशन से हम ये सातों गुणों की ऊर्जा को एक्टिवेट करते हैं, रिचार्ज करते हैं। अब ये गुण आज हम इतना अनुभव नहीं करते, यूज नहीं कर रहे, इसलिए धीरे धीरे न चाहते भी ये गुणों की ऊर्जा डीएक्टिवेट हो गई। दैनिक रूप में ये गुण हमें हमारे डेली रिस्पॉन्सेज, एक्शंस, फीलिंग्स, इमोशंस को दिशा नहीं दे रहे, और जो थोड़ी थोड़ी हमने कमजोरियां हमारे लाइफ में शामिल कर दी है, वीकनेसेस है, थोड़ी नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स हमने क्रिएट कर ली है, वो चीजें हमें बहुत प्रभावित करती, डोमिनेट करती। छोटी छोटी बातों में अपसेट हो जाना, दुखी हो जाना, फीलिंग में आना, सेंसिटिव फील करना, गुस्सा आ जाना, अपसेट हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, लो फील करना, दुख की फीलिंग में आना, ये जैसे स्वभाव बनता गया है। तो परमात्मा बैठकर हमें राजयोग की शिक्षा से ये आंतरिक गुणों का विकास कैसे करना है, इनको एक्टिवेट करना सिखाते हैं। परमात्मा बहुत सुंदर हमें शिक्षा देते हैं कि ये तुम्हारा स्वभाव है। आज तक हमने सोचा कि मुझे शांत बनना है, मुझे बहुत मेहनत करनी और शांति को अपने अंदर लाना है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब परमात्मा ने कह दिया, मीठे बच्चे तुम तो हो ही शांत स्वरूप, तुम तो हो ही पीसफुल सोल्स, तुम तो एंजल्स ऑफ पीस हो। तो ये अवेयरनेस दिलाई। इसलिए आज तक हमने देखा कि हमने हमेशा उस अवेयरनेस के लिए ईश्वर को जब याद किया तो दिया जलाया, दीपक जलाया, तो वास्तव में अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है। तो मेडिटेशन से हम ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि जैसे परमात्मा है, जैसे रचयिता है, वैसे ही उन्होंने हमें अपने गुणों से सुशोभित किया है। तो हमने शांत स्वरूप है, और जैसे जैसे ये शांति के गुण को हम अनुभव करते हैं तो हमारे अंदर धीरज आ जाती है, हमारे अंदर बहुत स्थिरता आ जाता है। फिर हम जो कारोबार करते हैं उसमें हमारी प्लानिंग, हमारी परख शक्ति, निर्णय शक्ति बहुत सुंदर रूप से हम यूज कर सकते हैं। और ये शांति का गुण जो है वो हमारे शरीर को भी सशक्त करता है। तो विशेष हमारी जो ENT सिस्टम है उसको ये नरिश करता है। इसलिए कई बार कोई अधीर्य होता है तो कहते हैं, अरे थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा शांति का श्वास लो, टेक अ ब्रेथ, क्योंकि शांति जो है वो हमारे ENT सिस्टम को नरिश कर रही है, शक्ति दे रही है, हील कर रही है। तो सारे दिन में जितना हम शांति को अनुभव करते हैं उतना बहुत पीसफुल फील करते हैं, शरीर भी बहुत हल्का हो जाता है। दूसरा गुण है स्नेह। तो अब परमात्मा हमें महसूस कराते हैं कि तुम तो हो ही स्नेह स्वरूप, ओरिजिनल, स्वयं के प्रति भी स्नेह, हर एक व्यक्ति जिनके संपर्क में आते हैं, अपने परिवार के लिए, कारोबार में जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। ये सृष्टि एक परिवार है, तो आत्मिक रूप पे तो सभी एक फैमिली है, सभी के लिए आत्मिक स्नेह अर्थात सबके लिए शुभ भावनाएं, सबके लिए आदर की भावनाएं, सम्मान की भावनाएं, हर एक के प्रति कल्याण की भावना। तो वो जो आंतरिक स्नेह जो है वो जब हम महसूस करते हैं तो हर एक के साथ जब हम संबंध में आते हैं तो बहुत स्नेह की ऊर्जाओं की लेन देन होती है, पॉजिटिव एनर्जीज की लेन देन होती है और संबंध सशक्त बनते हैं। तीसरा गुण है पवित्रता, शुद्धता। तो आत्मा तो है ही पवित्र स्वरूप, शुद्ध, प्योर, डिवाइन। स्थूल रूप में भी कोई स्थान जहां क्लीनिनेस हो हमें अच्छा लगता है। अगर हम देखें हम कोई चीज स्वीकार भी कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा किचरा आ जाता है तो हमें नहीं अच्छा लगता, हम उसको छोड़ देते। स्वच्छता प्रिय, जो मन से भी स्वच्छ है, जिसकी भावनाएं हमेशा शुद्ध है, ऐसे व्यक्ति के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो हम देखते हैं अंतर की स्वच्छता अर्थात जहां कोई भी नेगेटिविटी नहीं हो, कोई भी नेगेटिविटी रूपी किचड़ा ना हो। तो आत्मा है ही पवित्र स्वरूप, शुद्ध स्वरूप। और जैसे जैसे इसको हम अनुभव करते हैं मेडिटेशन के द्वारा, हमारे कारोबार में वो शुद्धता आती जाती है, ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी, हम जो सोचते हैं वो हम बोलते हैं, जो बोलते हैं वो हम करते हैं, और तो संबंधों में ट्रस्ट बहुत सहज हो जाता है, फेथ सहज हो जाता है। चौथा हमारा गुण है, ओरिजिनल वर्चू है कि हम तो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। लेकिन आज तक हमने बाह्य दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त की, अब परमात्मा बैठकर हमें अंतर की दुनिया के बारे में भी, स्पिरिचुअल लॉज के बारे में भी ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं। तो जैसे जैसे इस ज्ञान को हम समझते जाते हैं और इसको अपने जीवन में लाते जाते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, अपने में परिवर्तन लाते जाते हैं समझ के आधार से, तो हमारा ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हमारे अंदर वो बैलेंस दिखाई देता है। और फिर हमारे कर्मों के द्वारा हम औरों को प्रेरणा देते हैं, ज्ञान युक्त जीवन हमारा बनता जाता है, उससे लोगों को भी हमसे प्रेरणा मिलती है, हमें क्लैरिटी होती है और जीवन में बहुत संतुलन दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि आत्मा का पांचवा गुण है कि आत्मा है ही सुख स्वरूप, खुशी से भरपूर। अर्थात जब हम ये स्मृति में आते हैं, जब इस गुण को हम अपने अंदर सशक्त करते हैं, तो हमारे अंदर हर पल उमंग उत्साह रहता है। हम हर कार्य के लिए बहुत खुशी से वो कार्य करते हैं, बहुत उमंग से करते हैं और इससे कार्य की सफलता बहुत सहज हो जाती है। हमारे आसपास के वाइब्रेशन बहुत लाइट और हैप्पी हो जाती है। लोगों को हमारे साथ बात करने में खुशी मिलती है। हमारे प्रेजेंस से वातावरण हील हो जाता है, हल्का हो जाता है, आनंदित हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं ये हमारा नेचुरल स्वभाव है। थोड़ा भी जब हम दुखी होते हैं ना, तो खुश रहने के लिए हम कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि खुश रहना ये नेचुरल स्वभाव है, सुख स्वरूप है आत्मा। तो छठा गुण है कि आत्मा शक्तिशाली, आंतरिक बल, मनोबल, ये हमारा स्वभाव है, हिम्मत, आंतरिक शक्ति। तो जैसे जैसे ये गुण को हम अपने अंदर भरते जाते हैं, तो हमारा अपने में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। हम महसूस करते हैं कि हम परमात्मा की बहुत श्रेष्ठ रचना है और परमात्मा ने हमारे अंदर बहुत सारे गुण और शक्तियां भरी है। हम बहुत सुंदर है, शक्तिशाली है, अंदर से हम सक्षम है। तो इससे ये जो नेचुरल सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो हमारे बोल में, हमारे जीवन में, हमारे कर्मों में दिखाई देता है। हिम्मत रहती है, कोई भी परिस्थिति हो हम भयभीत नहीं होते, जैसे अभी के समय के अनुसार ये बहुत आवश्यक है। नेवर गिव अप एटीट्यूड हो जाता है, हमें पता है विघ्न आया है तो इसका समाधान भी जरूर है, रास्ता लंबा है लेकिन मंजिल है ही, पहुंच ही जाएंगे। उस अंधेरे के बाद भी रोशनी तो है ही, रात के बाद भी दिन है ही। तो बहुत पॉजिटिव हम रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, शक्तिशाली रहते हैं, समर्थ महसूस करते हैं। और ये छह गुण जब हमारे अंदर अनुभव करते हैं, तो सातवां जो आंतरिक स्वभाव है हमारा, संस्कार है, गुण है, वो है आंतरिक आनंद, आनंद की स्थिति, बहुत डीप लेवल ऑफ कंटेंटमेंट है, जहां हम अपने आप को भरपूर समझते हैं, सब प्राप्तियों से तृप्त समझते हैं, कंटेंटेड फील करते हैं। और इस इनर कंटेंटमेंट से हम अंदर से बहुत बहुत लाइट और टेंशन से कंप्लीटली फ्री हो जाते हैं। तो ये सातों गुणों की ऊर्जा हमें शरीर से भी सशक्त करती है, जैसे हमने देखा शांति जो है वो हमारे ईएनजी सिस्टम को नरिश करती है। फिर हम देखते हैं प्यार जो है वो हमारे कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम को नरिश करती है, प्रेम का भाव, शुभ भावनाएं हर एक के लिए, तो हार्ट हमारा मजबूत होता है। फिर हम देखते हैं कि पवित्रता हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो स्किन है उसको नरिश करता है, क्लेंसिंग होती है। फिर हम देखते हैं कि ज्ञान स्वरूप हमारा न्यूरो सिस्टम जो है, मस्तिष्क है, उसको नरिश करता है। खुशी जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नरिश करता है, इसलिए कहा जाता है खुशी से खाओ। नहीं, हमारे बड़े हमेशा कहते थे खुशी से खाओ तो पचेगा। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो शक्ति का गुण है, आंतरिक शक्ति, वो हमारे मस्कुलर सिस्टम को नरिश करता है। तो उस रूप से हम देखते हैं, फिर आंतरिक आनंद का जो गुण है वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को नरिश करता है। तो ये सातों जो हमारे निज स्वभाव है, हमारे इनर वर्चुअल्स है, इनर क्वालिटीज है, आंतरिक स्वभाव है, ये हमें शरीर को भी सशक्त करने में, स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो इसलिए राजयोग मेडिटेशन जो हम आगे चल के सीखेंगे, वो ये आंतरिक गुण और शक्तियों के पोटेंशियल को विकसित करने में हमें मदद करता है। और ये गुण और शक्तियां फिर हमें दैनिक रूप में हमारे हरेक परिस्थिति का समाधान करने के लिए और हरेक संबंध को सुखदायी बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, उस स्नेह में, उस संबंध में स्नेह की लेन देन को बढ़ाने के लिए मदद करता है, संबंधों को समीप लाने में, हार्मनी में लाने में मदद करता है। तो आत्मा जो है वो अंतर से गुणों से भरपूर है, लेकिन आज हम जीवन में देखते हैं कि ना चाहते भी अंतर में हमारी कुछ कमजोरियां हैं, जिसके वजह से हम ये गुणों को बहुत सहजता से महसूस नहीं कर पा रहे। तो धीरे धीरे राजयोग मेडिटेशन से ये स्व परिवर्तन आ जाता है। जैसे कहा ही जाता है कि डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट, अंधकार रोशनी के अभाव को कहा जाता है। तो अगर अंधकार को निकालना है तो क्या करना होगा? मैं जब ये कमरे में आई तो यहाँ अंधकार था, अब अगर मैं एक बाल्टी लेकर यहाँ के अंधकार को भर कर बाहर फेंकने का प्रयत्न करूं तो शायद सारा दिन, कितने भी दिन मैं ये प्रयास करती रहूं, लेकिन ये अंधकार को तो मैं प्रभावित नहीं करूंगी, वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, मैं थक जाऊंगी। क्योंकि वास्तव में अंधकार सिर्फ रोशनी की कमी को कहा जाता है, इसलिए हम देखते हैं कि अंधकार को निकालने के लिए मुझे रोशनी ऑन करना ही पड़ा, लाइट ऑन करना ही पड़ा। जैसे मैंने लाइट ऑन किया, रोशनी समाप्त, रोशनी के आना माना अंधकार समाप्त। तो कितना सहज हो गया। ऐसे ही जो हमारे आंतरिक गुण है वो ये रोशनी के समान है, और जैसे जैसे राजयोग मेडिटेशन से ये गुणों का विकास होता जाता है, धीरे धीरे जो हमारे अवगुणों का, कमजोरियों का अंधकार जो हमें इतना ज्यादा महसूस होता है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यहाँ गुणों की और शक्तियों को हम एक्टिवेट कर रहे हैं, वहां अपने आप कमजोरियां डीएक्टिवेट हो जाती, तो ये परिवर्तन बहुत सहज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ हम परमात्मा के द्वारा ये बहुत सहज विधि सीख रहे हैं कि परमात्मा हमें कहते हैं कि आप स्वयं में हमेशा अपने आप को अपने गुणों की और विशेषताओं के आधार से देखो, क्योंकि सबसे ज्यादा समय हम अपने साथ बिताते हैं। तो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और अपने आप से क्या बातें करते हैं, वो एनर्जी हम अपने आप को भेज रहे हैं। तो सारा दिन बीच बीच में समय निकालकर, जो हम यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं, हर घंटे एक मिनट के लिए हम समय निकालते हैं। उसके लिए एक ऐप भी बनाया है जहाँ थोड़ा समय बीप बचता है, थोड़ा कुछ क्षणों के लिए संगीत होता है और हमें अटेंशन क्रिएट करते हैं कि हम शांत स्वरूप हैं। तो जैसे ही अवेयरनेस क्रिएट किया, हमें बहुत अच्छा लगता है, वो आंतरिक शांति को महसूस करते हैं और उसको हम अंतर से जो महसूस करके सशक्त करते हैं, तो उसके बाद के जो कारोबार है उसमें वो आंतरिक शांति की जो फीलिंग है, वो स्मृति है, वो स्थिरता है, वो लाइटनेस जो है वो हमें इन्फ्लुएंस करती है, वो बाकी के कारोबार को सहज कर लेती है। हमारा क्लैरिटी ऑफ थॉट रहता है और फिर हमें परख कर निर्णय लेना बहुत सहज होता है। तो ऐसे सारे दिन में बीच बीच में ये हर गुण को हम स्मृति में लाते हैं। तो अब हमें ये नहीं सोचना है कि मेरे में बहुत गुस्सा है, मेरे में ये कमजोरी है, मैं क्या करूं, मेरे में बहुत टेंशन है, मैं बहुत चिंता करती हूँ। परमात्मा हमें बहुत प्यार से समझाते हैं कि तुम बहुत शांत हो, शक्तिशाली हो, मेरे बच्चे हो, मेरे जैसे हो। तो जैसे ईश्वर हर गुण और शक्ति का स्रोत है, ऐसे परमात्मा ने हमारे अंदर भी हर गुण और शक्ति भरी है, और इस गुणों के आधार से जब हम अपने आप को देखते हैं और महसूस करते हैं तो हम अपने आप को बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। तो ये स्वचिंतन ही हमें बहुत शक्ति देता है, हमारे मन को भी सशक्त बनाता है। तो अपने आप के बारे में भी, औरों के बारे में भी, जब हम उनको भी आत्मिक भाव से देखते हैं, जैसे परिवार के हर एक सदस्य हमारा जीवन साथी है, हमारे माता पिता हैं, हमारे बच्चे हैं, और भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी उस आत्मिक भाव से देखते हैं, उनके मस्तक में भी वो बहुत सुंदर लाइट को, डिवाइन स्पार्क ऑफ एनर्जी को देखकर, उनको भी हम रोज मेडिटेशन में पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। धीरे धीरे ये अभ्यास जब स्वाभाविक हो जाता है, दैनिक रूप में हम अभ्यास करते हैं, तो हम अपने आसपास के वातावरण को ही इतना सशक्त और लाइट कर देते हैं कि हमारे संपर्क में आने वाले लोग भी हमारे प्रेजेंस से, हमारे वाइब्रेशन से बहुत शांति और शक्ति का अनुभव करते हैं। तो जरूर आप आगे भी हमारे साथ इन सभी सेशंस में जुड़े रहेंगे, जैसे आज हमने स्वयं के बारे में जाना और देखा कि कैसे मेडिटेशन के द्वारा हम ये आंतरिक गुणों को अनुभव कर सकते हैं। कुछ समय के लिए चलिए अब एक अनुभूति की ओर। मैं आपको कुछ विचार देती जाऊंगी, आप इन्हीं विचारों को अपने मन में क्रिएट करते हुए अपने मन को दिशा देंगे। थोड़ा अलर्ट होकर बैठ जाएंगे, दो मिनट के लिए अपने आप को सभी कारोबार से फ्री कर लेंगे। आंखें अगर बंद करना चाहे तो बंद कर लें। कुछ समय के लिए मन को अंतर की ओर दिशा देंगे। मन की आंखों के द्वारा अपने सुंदर आत्मिक स्वरूप को देख रहे हैं। मस्तक के बीच चमकता हुआ ये सुंदर सितारा, एक दिव्य लाइट जिससे शांति की ऊर्जा सारे शरीर में फैल रही है। ये शांत स्वरूप आत्मा जिसका ये शांति का प्रकाश मेरे आसपास सारे कमरे में है, एक शांति का वातावरण निर्माण कर रहा है। कितना रिलैक्स, कितना हल्कापन महसूस हो रहा है। अंतर में ये शांति की महसूसता मुझे कितना सुकून दे रही है। महसूस करते हैं कि शांति हमारा निज स्वभाव है। मैं हूं ही शांत स्वरूप आत्मा। ये शांति की फीलिंग मुझे कितना शक्ति दे रही है। मैं मन ही मन में अपने परिवार को भी याद कर रहा हूँ। परिवार के हर एक सदस्य को मन की आंखों से देख रही, उनके मस्तक के बीच भी सुंदर दिव्य लाइट को देख रही, आत्मिक लाइट को। वो भी शांत स्वरूप आत्माएं है, पवित्र स्वरूप आत्माएं। उनको भी शांति के, स्नेह के, शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस दे रही हूँ। फैमिली के हरेक मेंबर को देख रहे हैं कि परमात्मा की शांति की लाइट, पवित्रता की लाइट उनके आसपास से उनको सशक्त कर रही है। सारे विश्व को ही ये शांति के वाइब्रेशन हम दे रहे हैं। मन की आंखों से हम देख रहे हैं कि सारा विश्व रूपी ग्लोब परमात्मा की शांति की और पवित्रता की लाइट से सुरक्षित है। परमात्मा की हीलिंग एनर्जी, शांति की एनर्जी सबको प्राप्त हो रही है। अपने अंदर इस शांति को महसूस करते हुए, उस शक्ति को भरते हुए फिर से अपने वर्तमान में आ जाते हैं। लेकिन अंदर में महसूस करते हैं कि हम जब चाहे इस आंतरिक शांति को अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति एंड जय हिंद। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका मैं लेफ्टिनेंट कर्नल विकास स्वागत करता हूं, एक बार फिर अभिनंदन करता हूं। अंदरूनी शक्ति, इनर स्ट्रेंथ या इनर पावर, आज का समय जो चल रहा है हमारे देश में, हम सबके सामने, पूरे विश्व में, हम सभी जानते हैं अंदरूनी शक्ति कितनी अहमियत रखती है, कितना इम्पोर्टेंस है उसका हमारे जीवन में। आज हम सभी अलग अलग तरीके अपना रहे हैं जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़े, हम सेफ रहें, हमारा परिवार सेफ रहे। मेरा मानना है कि हमें केयरफुल जरूर रहना है, लेकिन फियरफुल बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि जितना हमारे मन में डर होगा उतना ही हमारे जीवन में सारी प्रॉब्लम्स जो हमारे आसपास हैं वो हमारे अंदर आएंगी, हमें परेशान करेंगी, और उसकी वजह से ही हमारी इम्यूनिटी वो घटती है और हम बहुत ही सहज शिकार हो सकते हैं किसी भी बीमारी का। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, कारगिल युद्ध शुरू होने के जस्ट साथ ही साथ मेरा पोस्टिंग हो गया सीओडी मुंबई। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं सीओडी मुंबई पहुंचा तब तक कारगिल युद्ध अपनी पूरी पीक पे था, और उन्हीं दिनों जब मेरे ऑफिस में दो बहनें आईं और बहुत प्यार से आकर उन्होंने मुझे कहा, भाई जी ओम शांति। मैंने बहनों से पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि हम लोग काफी बिजी थे उस समय अपने कार्य में। तो बहनों ने बहुत प्यार से बोला कि हम अपने फौजी भाइयों को राखी बांधना चाहते हैं, आपकी परमिशन चाहिए। मेरी आवाज में थोड़ी झुंझलाहट बढ़ गई। मैंने उन्हें बोला कि आप क्यों राखी बांधना चाहते हैं। बहनों ने और प्यार से और शांत तरीके से बोला कि हम बहनें तो कारगिल जा नहीं सकती, वहां युद्ध चल रहा है, लेकिन हमारा विश्वास है कि यहाँ हम अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधेंगे और वहां हमारी दिल की दुआ कारगिल पहुंचेगी। मैंने बहनों को बहुत प्यार से बोला, प्लीज आप बैठ जाइए, आप मुझे ये समझाइए कि मुंबई से कारगिल तकरीबन 3000 किलोमीटर, कैसे ये पॉसिबल है कि हमारी दिल की दुआ जाएगी। बहनों ने मुझसे कुछ प्रश्न किए जो आज मैं आपके सामने भी रखता हूँ। बहनों ने बहुत प्यार से पूछा कि विकास भाई आप भगवान को याद करते हैं। मैंने बोला हाँ बेशक याद करता हूँ। उन्होंने पूछा, विकास भाई आप भगवान को मानते हैं। मैंने बोला बिल्कुल मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। और तीसरे प्रश्न उन्होंने पूछा कि विकास भाई क्या उस भगवान को आप जानते हैं। साथियों, मैंने सच्चे दिल से कहा नहीं, मैं जानता नहीं। अंत में बहन ने एक प्रश्न और पूछा मुझसे। बहनों ने पूछा कि मान लीजिए कोई इंसान है जिसे आप जानते नहीं है, क्या आप उसे याद कर सकते हैं। मैंने गहराई से सोचा और महसूस किया और मैंने सच्चे दिल से जवाब दिया कि नहीं, हम जिसको जानते नहीं हैं कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल कि हम उसे याद करें। तो बहनों ने मुझे बताया, विकास भाई बचपन से लेके आज तक आप भगवान को याद नहीं करते बल्कि फरियाद करते हैं, भगवान से मांगते हैं, और मांगने वाले को इस दुनिया में भिखारी कहते हैं। हम कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं। अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो हम फरियादी थोड़े ही हैं, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। परमात्मा जो कि शांति का सागर है, सर्वशक्तिमान है, पतित पावन है, उससे हमें मांगने की दरकार ही क्या है। जो उसका है वो हमारा है, कहते हैं ना, जो बाप का सो आपका। तो साथियों, आप देखिए हमारे देश में एक हम नारा भी लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। आप जानते हैं किस नाते से हम भाई भाई हैं? वो नाता है हमारा रूहानी नाता, जिस्मानी नाता नहीं, क्योंकि जिस्मानी नाते से हम सबके अपने अपने माता पिता हैं, अपने अपने भाई बहन हैं, लेकिन रूहानी नाते से या आत्मिक रूप से हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, और उसके बच्चे या उसकी संतान होने के नाते हम सब आपस में भाई भाई हैं। इसलिए कहते हैं विश्व बंधुत्व या विश्व एक परिवार है, हम सब एक हैं, हम सब एक परिवार के हैं। भले ही हम सब की भाषाएं अलग हैं, जिस वजह से हम परमात्मा को अलग अलग नामों से याद करते हैं। आप देखिए हमारा पिता एक है, हम सब मानते भी हैं लेकिन सिर्फ जानते नहीं है कि वो एक है कौन। और सचमुच साथियों, जब मैंने 1999 में ये 7 days का कोर्स प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में किया, जिसे हम राजयोग मेडिटेशन कोर्स कहते हैं, उस दिन से उस कोर्स के दौरान मुझे उस सुप्रीम सोर्स का परिचय मिला। और जैसे ही सोर्स का परिचय मिला, वो जो फोर्स है, वो जो शक्ति है, वो मुझ में धीरे धीरे भरने लगी। जरूर इस यात्रा में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जिसको आज तक हमने देखा नहीं, सिर्फ महसूस किया है, या जिसके बारे में सिर्फ हम मानते आए हैं, उससे वो सारी प्राप्ति करना हर एक आत्मा की अपनी अपनी एक रूहानी यात्रा है। और साथियों, मैं आप सबको ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि प्लीज कुछ समय निकाले कि हम अपने जीवन में राजयोग का अध्ययन करें और उस परमात्मा से, उस सुप्रीम पावर से, उस परम शक्ति से अपना असली नाता जोड़ें। मैं बनारस के गंगा घाट से बोल रहा हूँ। हर वर्ष करोड़ों लोग यहाँ पर आकर स्नान करते हैं, गंगा को पतित पावनी कहते हैं। इसके बावजूद हम कहते हैं हे पतित पावन आओ, तो वो कौन है जिसको हम पतित पावन, सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सर्व गुणों और सर्व शक्तियों का सागर कहते हैं। साथियों, जब मैंने राजयोग का अभ्यास प्रारंभ किया, भले ही मेरा जीवन का बैकग्राउंड कैसा भी था, मेरी सोच धीरे धीरे परिवर्तन होने लगी, और उसी वजह से धीरे धीरे मैंने पाया कि मुझे मेरे और साथियों का, खास तौर पे मेरे सबॉर्डिनेट्स का बहुत सहयोग मिलने लगा। मेरा काम, जो कि नॉर्मल तरीके से हम उसे मुश्किल कहते हैं या स्ट्रेसफुल कहते हैं, मेरा काम और ही आसान हो गया। आज ऐसी घड़ी में हम सभी थोड़ा सा एक कदम बढ़ाएं परमात्मा की तरफ। परमात्मा का वायदा है, एक कदम आपका और हजार कदम बाप के। परमात्मा वो शक्ति प्रदान करता है जिससे हमारी इनर पावर्स और बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ अगर हम शांत हैं, हमारा मन शांत है, हम सॉल्यूशंस को बहुत आसानी से देख सकते हैं और उनके हिसाब से कार्य कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि 21 साल का अनुभव एक छोटे से गीत के माध्यम से मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा, और वो गीत मेरे दिल के बहुत करीब है। ओम शांति।
धड़कन में होती है। मैं हूँ एक जगमग ज्योति जैसे सीपी में मोती है। रिम झिम करती हुई जैसी उड़ी कोई परी, ऐसी चढ़ी कुमारी, पल पल हुए सुहाने, प्रभु याद में तुम्हारी, पल पल हुए सुहाने, प्रभु याद में तुम्हारी, आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी कुमारी, आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी कुमारी, आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी कुमारी।
बहुत बहुत शुक्रिया दीपा दीदी आपका, आपने बहुत गहराई से हमारी आंतरिक क्षमताओं और योग्यताओं पर प्रकाश डाला। हम सब जरूर उस पर कार्य करेंगे और उन्हें विकसित करेंगे, क्योंकि लाभ इससे हमें ही है। देश, समाज, परिवार बाद में लाभान्वित होगा, लेकिन पहले तो हम खुद ही लाभान्वित होंगे इस प्रकाश से, इस शक्ति से। साथ ही सुंदर अनुभव के लिए विकास जी, आपका भी दिल से बहुत बहुत आभार। प्रेरित करने वाला अनुभव है कि कैसे हम सब भी अपने आप को मेडिटेशन के माध्यम से सशक्त बना सकते हैं। विवेकानंद जी भी यही कहा करते थे, एक सुंदर सी स्टोरी सुनाया करते थे वो, कि एक बार ये बात हुई कि जो अद्भुत क्षमता है, चमत्कारित शक्ति है, उसे कहां छुपाया जाए, क्योंकि यदि किसी ऐरे गहरे व्यक्ति के हाथ ये पड़ गया तो वो संसार को तबाह कर सकता है। किसी ने कहा कि सागर की गहराइयों में छुपा देते हैं, किसी ने कहा कि नहीं हम बहुत ऊंची पहाड़ी पे छिपा देते हैं, किसी ने कहा कि नहीं हम बहुत ही घने गहरे जो जंगल है वहां छिपा देते हैं। लेकिन एक वृद्ध ने कहा कि नहीं, यहां व्यक्ति पहुंच जाएगा तुम ऐसा करो कि उसके अंदर ही इस अद्भुत शक्ति को छिपा दो, वही इसे प्राप्त करेगा जो अंदर जाएगा, और अंदर जाकर के जब वो स्वयं को महसूस करेगा, विश्व के कल्याण की बातें सोचेगा, तब वो इस शक्ति का सदुपयोग करेगा। इसलिए अंदर छिपाओ, सचमुच ये हमारे अंदर है। जितना हम अंदर जाएंगे उतने ही अपनी अद्भुत शक्तियों से परिचित होते चलेंगे। निश्चित रूप से आज के सत्र में भी आपने इस पर गहराई से विचार भी किया होगा, और मैं चाहूंगा कि सारे दिन भी आप इस पर विचार करें। शाम को 7:30 बजे पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, आपका दिन सुखद हो, सुंदर हो, आनंद और शक्तियों से परिपूर्ण हो। नमस्कार।
अपनी जरूरतों को किनारे रख हमारी सुरक्षा जिनके जीवन का ध्येय है, जिनका व्यक्तित्व बोझ, वीरता और जुनून के तेज से चमकता है, भारत के जांबाज शूरवीरों के लिए ब्रह्मा कुमारी सिक्योरिटी सर्विसेज विंग प्रस्तुत करता है 22 और 23 मई को 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस Inner Strength, Key to Overcome Challenge। Awakening TV चैनल पर, Tata Sky 1084 पर या Jio TV 1060 पर।